ओम शांति। आप सभी कैसे हैं? आज भट्टी की लास्ट डे है या भट्टी शुरुआत हुई है? सोच के जवाब दीजिए, शुरुआत है या लास्ट? भट्टी में निरंतर रहना है, उसकी आपको टिप्स मिली है दो ढाई तीन दिन से। बाबा तो कहते हैं कि सेफ्टी का साधन जो है याद की भट्टी, तो बच्चों को निरंतर याद की भट्टी में रहना है। तो आप सभी बाबा के घर में कौन कौन COVID-19 के बाद पहली बार आए हैं? सभी? सबको बहुत अच्छा लग रहा है? तभी जो आपको अच्छा लगा है यहां जाने के बाद दूसरों को देना भी है। तो अभी हम ये 45 मिनट के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा कुछ अनुभूति करेंगे। तो उससे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, माया को भगाने की एक्सरसाइज। माया कब आती है? जब याद में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, बाकी समय पर माया नहीं आती है, है ना? तो ये क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं और काफी बीच बीच में रिसर्च करते रहते हैं, COVID-19 के बाद सारी दुनिया बहुत सीरियस है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ज्ञान नहीं जानते हैं। तो हम सभी स्वयं को पूछे, क्या हम सीरियस हैं? ये सवाल आप सबके लिए, और स्वयं को आप जवाब दें कि बाबा हमें जो जिस नजर से देखना चाहते हैं, क्या हम स्वयं को उसी नजर से देख रहे हैं? COVID-19 की इतनी एक भयंकर सिचुएशन आया, इसको इंग्लिश में पेंडेमिक बोलते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से आगे की तरफ मल्टीप्लाइड रेट में ये बीमारी बढ़ती गई। जो शुरुआत में आप जो स्थिति आप और जो परिस्थिति आप देखा, और आज स्वयं से पूछो, योग अभ्यास के प्रति, ज्ञान के प्रति और आध्यात्मिक जीवन के प्रति वो सीरियसनेस है या नंबर वन हो गया है? स्वयं का आंसर दो। तो माया को भगाने की एक सुंदर एक्सरसाइज आप आपस में भी कर सकते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ज्ञानी बच्चे हैं हम सभी जानते हैं, हमें कहा गया है, हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि बाबा जो कहते हैं वो करो और बाकी नहीं करना है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज की साइंटिफिक नेम है अटेंशन प्रोफाइल। आप कोई भी चीज कितना अटेंशन से करते हैं ये उसकी चेकिंग है। विज्ञान की जगत में मेडिटेशन पर जो रिसर्च हो रहा है, ये चेकिंग बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और जो हम स्पार की ओर से किया है, तो माताएं इसमें बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं। अटेंशन का मतलब आपको, मैं जैसे कहूंगा आपको करना है, लेकिन क्या करना है उस पर अटेंशन देना है। जैसे हम कहते हैं कि जो बाबा कहते हैं आप जब सुनो, बाबा कहते हैं तो आपको वो करना है, और जो करने के लिए कहा जाएगा उसके आगे बाबा कहते हैं वो शब्द नहीं है, वो आपको नहीं करना है। सबको समझ में आया? जब कहा जाए बाबा कहते हैं, जो बाबा कहते हैं करने के लिए वो करना है, और जो करने के लिए कहा जाएगा उसमें बाबा कहते हैं शब्द नहीं है, उसको नहीं करना है। तो यहां पर जो बैठे हैं सभी को पार्टिसिपेट करना है, आगे से लेकर पीछे तक। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, इसमें आपकी बुद्धि की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आप कितना अटेंशन से सुनते हैं। हम पहले धीरे धीरे कहेंगे, बाद में फास्ट कहेंगे, उसको आपको सुन करके करना है। सभी रेडी है? जो थोड़ा टेढ़े बैठे हैं ना ऐसे करके, तो सीधा बैठिए सभी, ठीक है? एकदम अलर्ट बैठिए, क्योंकि बिना अलर्ट बैठे हम राजयोगी नहीं बन सकते, ठीक है? सभी सीधा बैठिए, कमर सीधा करके 30 सेकेंड के लिए आंखें बंद करिए सभी। सवाल स्वयं से तीन सवाल करिए, अभी मैं कहां बैठी हूं, और आंसर खुद को दीजिए, अभी मैं क्या कर रही हूं। अभी मुझे कहां जाना है, ये आंसर आप सभी अपने आप को दीजिए। अभी आंखें खोले। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, फटाफट होना चाहिए। बाबा कहते हैं हाथ नीचे करो, खड़े हो जाओ। अच्छा, जो जो खड़े हो गए पास हुए फेल हुए। छोटा सा एक्सरसाइज है, 30 सेकंड के अंदर चेंजेस, और एक मिनट के लिए। बाबा कहते हैं आंखें बंद करो, बाबा कहते हैं आंखें खोलो, बाबा कहते हैं अपने दाहिनी तरफ देखो, हाथ हिलाओ। किसने हाथ हिलाया? जब कहा गया हाथ हिलाओ, आपको हाथ नहीं हिलाना चाहिए था। अब देखिए, छोटी से एक्सरसाइज में इसमें सीखने को क्या मिलता है। बाबा कहते हैं जब मैं बच्चों को अपना बनाता हूं, दो चीज का ज्ञान स्पष्ट देता हूं, एक मेरा अपना परिचय और आपका परिचय। मेरा अर्थ बाबा का, और आपका अर्थात आत्मा का परिचय। और साथ साथ दूसरा परिचय स्पष्ट देते हैं, माया क्या है। माया की जो स्पष्ट नॉलेज हम बच्चों को है, दुनिया में किसी को नहीं है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे बाबा ये जो बात करते हैं, सारा ज्ञान दे दिया कि ये मत करो ये करो, फिर ज्ञान में योग में बिठाते हैं, संसार में हम चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कारोबार होते हैं, और उस बीच में माया को पहचानना बहुत जरूरी। जब तक माया को नहीं पहचानेंगे, आपकी योग यथार्थ योग नहीं होगा। जैसे आप कई लोगों की हम क्लासेस सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कई लोगों सुनते हैं, आपको कैसे माया को परखेंगे? सुनते सुनते अगर आपके मन में संकल्प आता है, ये तो बाबा जैसे बोलता है या बाबा जैसे बोलती हैं, तो ये कौन कह रहा है आपके मन में घुस करके? माया। बाबा जैसा कोई बोल ही नहीं सकता। अगर सुनते सुनते कितनी भी अच्छी क्लास हो, आपके मन में संकल्प आ गया, या आप अपने आप से बात कर लिए, तो बाबा जैसे बोलते, बहुत अच्छी बात है। आप डायरी में नोट कर लीजिए, वो बात आप कभी भी धारण नहीं कर सकते हैं। वो आपको हमेशा कहां ले जाएगा? दलदल में ले जाएगा। तो उस एक्टिविटीज को लेकर के कुछ बाबा की मुरली में पढ़ रहा था, मुझे लगा आप सबको एक्सरसाइज कराए। 3-4 दिन से आपने बहुत कुछ किया है, सुना भी है, अभ्यास भी किया है। अगर सारा भूल जाओ, ये 4 एक्सरसाइज आपको कर लो बैठे बैठे। हम 3-3 मिनट के लिए करेंगे, समय बहुत कम है, आप 1-1 घंटा कर सकते हैं। लेकिन 3-3 मिनट की एक्सरसाइज में बाबा ने जैसे कहा करने के लिए वैसे करेंगे। उदाहरण यहां शुरू करते हैं। आप सभी साकार बाबा के अनुभव सुने होंगे, और जब साकार बाबा को जो सत्युग की फीलिंग है, जो आने वाला युग बाबा जो कृष्ण बनेगा, बहुत जैसे कहते हैं नेचुरल नेचर बाबा का था। हम बड़ों से सुनते हैं, दादियों से, कि जैसे मुरली में बाबा कहा कि ये बूढ़ा ब्रह्मा कल जाकर के मिचुल कृष्ण बनेगा, तो बाबा तुरंत एक्टिविटी करते थे। वो ऐसे आर्टिफिशियल नहीं होता था, नेचुरल। बाबा जैसे सुनते ही उसी संस्कार में चले जाते थे। और यहां तो हुआ, बाबा कई बार बच्चों से बात करते करते जैसे बुजुर्गपना खत्म, बचपना पूरा दिखाते थे। लच्छू दादी ने एक बार बाबा को कहा कि बाबा आप तो बुजुर्ग हैं, आप निमित्त हैं, अगर बीच बीच में आप ऐसे बचपना करेंगे, बच्चे सीखेंगे कैसे? तो बाबा को युक्ति रचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, आप सब सुने होंगे, अपने कमरे में आप दर्पण लगा दो, ताकि मैं खुद को देखूं, मैं बूढ़ा ब्रह्मा हूं, अभी मैं मिथुन कृष्ण नहीं बना हूं, मतलब भविष्य बनने वाला हूं। तो भविष्य और वर्तमान की बैलेंस रखने के लिए बाबा युक्ति रचा। आप मुरली में सुनेंगे, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, बाबा उदाहरण और युक्ति की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे अगर आप बार बार शरीर को कहते हो कि बीमारी है, बीमारी है, बीमार शरीर है, बाबा उदाहरण घोड़ा का देते हैं। अगर घोड़ा को बार बार चाबुक मारोगे तो वो ठीक से दौड़ेगा नहीं, वो इधर उधर भागेगा। तो राजयोगी जिस शरीर में है, ये शरीर को घोड़ा कहा जाता है। अगर बार बार संकल्प करते हो कि ये बीमार शरीर है, और उस भाई की शरीर तो बहुत अच्छा है, वो बीमार नहीं, मैं बीमार हूं, तो बार बार बीमार बीमार कहने से आपके शरीर आपके साथ नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं जैसे घोड़ा को चाबुक मारना, अर्थात बार बार कहना कि ये बीमार शरीर, बीमार शरीर, तो बीमार न होते हुए आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। ये स्मृति का प्रभाव, संकल्प का प्रभाव। तो अभी हम एक्टिविटीज की तरफ चलने से पहले एक बहुत सुंदर एक्टिविटी में पांच बात पर आपकी मना ध्यान खिंचवाऊंगा। मुझे दो भाई चाहिए और दो बहनें चाहिए स्टेज को, जब आपको बुलाया जाए पाना। और आपको डिब्बी मिले ही, डिब्बी और क्या मिला है, जब आपको हाथ में दिया गया कुछ सोचा आपने ये क्यों दिया जा रहा है, हा? कुछ संकल्प किया था होगा, सभी ज्ञानी बच्चे हैं, जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। लेकिन ये जो अभ्यास है बाबा ने मुरली में कहा था, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए कोशिश करेंगे हम। मैं आज आपको पांच एक्सरसाइज बताएंगे, और ये एक्सरसाइज आत्मिक स्थिति की अभ्यास से संबंधित है। जैसे छोड़ो तो छूटो, बाबा कहते हैं आप ऐसा ड्रेस पहनो आत्मा अभी शरीर छूटे तो छूट जाए, बंधन न हो। टाइट ड्रेस मत पहनो, हल्का ड्रेस, ढीला ड्रेस पहनो। हल्का ड्रेस, ढीला ड्रेस का अर्थ है कि बार बार संकल्प दो अपने आप को, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अगर देहभान टाइट ड्रेस है, डबल लाइट फरिश्ता ढीला ड्रेस है, जब चाहो तब ड्रेस अप उतार के ऊपर जा सकते हो। छोड़ो तो छूटो की एक एक्सरसाइज 3 मिनट का करेंगे, इसमें भी दो भाई दो बहनें चाहिए स्टेज के ऊपर। और एक्सरसाइज करेंगे संगम युग की आसन। संगम युग की आसन कौन सा है, कमलासन राजयोगी की आसन है। संगम युग की आसन जो है, आप मुरली सुने, मैं आप आंसर मुरली में मिलेगा आपको, आप इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढो। और सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस से करेंगे हम, और फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है, आप उसको लेकर चलते हो, और बीच बीच में फुल स्टॉप लगाने की जो अभ्यास करेंगे, जिसकी फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास नेचुरल है, वो विजयमाला की दाना बन जाएंगे। बाबा के महावाक्य हैं, जिसकी फुल स्टॉप लगाने की अभ्यास नेचुरल है वो क्या बनेंगे, विजयमाला में आ जाएंगे। और लास्ट अभ्यास रेस्ट्रिक्ट अवेयरनेस। अगर आपको नींद आती है योग में, मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहा है, आप तुरंत ऐसे फील करो जैसे मेरा मन, जैसे शरीर फटा जा रहा है, तो उस समय आप कौन से एक्सरसाइज करेंगे, और करोगे तो आपको तुरंत प्राप्ति हो जाएगी 1 मिनट में। ये 5 बात सीखेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले छोड़ो तो छूटो की बात करने से पहले हम कुछ मुरली पॉइंट सुनेंगे। जब भी आप योग में बैठो, आप सब यहां पर जो भी बैठे हैं आप चेक करिए, ये 3 दिन के अंतर्गत ये संगठित योग चल रहा था, और योग के दौरान आप स्थिर अचल कितनी देर बैठे, आप जितनी देर स्थिर और अचल बैठे उतनी देर आपको योग की सिद्धि प्राप्त हुई। आप लोग सुने होंगे दादी, कुंज दादी के एक अनुभव जो बताती है कि शुरू शुरू में जब यज्ञ में विघ्न, बहुत ज्यादा विघ्न आ रहा था, तो बाबा प्रैक्टिस कराते थे योग अभ्यास, बहनों की एक टीम बनती थी, 4 बहन, 14 बहन, 21 बहन ऐसे, तो रात भर भट्टी होता था। उस समय अटेंशन स्थिरता पर दिया जाता था, अलर्ट बैठना, शरीर को नहीं हिलाना, आंखें खुला रखना। अब प्रैक्टिस तो आजकल तो हमको वैरायटी प्रैक्टिस मिल रही है, अनेक क्लासेस, उस समय कुछ भी नहीं था, बस एक अभ्यास स्वयं का आत्मा समझ करके परमधाम में बाबा को याद करना, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और मुझे लगता है कि वही अभ्यास सही, अभी हम जो कर रहे हैं, हम बीच को छोड़ करके कहां जा रहे हैं, टाल टालियों में जा रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बार बार समय देख रहा था, बहुत सारे सवाल की ढेर आ गया था सूरज भाई के पास। आप संकल्प करें इस बात पर, बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय ऐसा होगा कि आपके पास आत्माएं आएगी और आपको मांगेगी कि आप मुझे शांति दो, सुख दो और मुझे जीवदान दो, तब क्या करेंगे? बाबा कहते हैं जो प्रसन्न चित्त आत्मा है, जो प्रश्न से परे रहते हैं और दिन भर में समय निकाल करके दुआ दो दुआ लेने की सेवा करते हैं, वो अंत समय में उनकी स्थिति वैसी होगी जैसे मंदिर में मूर्ति है और इष्टदेव इष्टदेवी हैं। तो वो तो वहां पे नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे, आप उनको दृष्टि देंगे और दृष्टि देते उनको प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस हम 4 स्टेप में करेंगे आज। तो चेक करो, जब भी आप संगठित रूप में योग अभ्यास में बैठो तो क्या करना चाहिए, 75 की मुरली नोट कर लीजिए, आपको पढ़िए इसको, भट्टी के समय में हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। और पूरा एक्सरसाइज ये 2 पॉइंट पर है, आज की जो हम 4 एक्सरसाइज करेंगे। गीता ज्ञान का पहला पाठ क्या है, अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ जो है विधि है और अंतिम पाठ जो है सिद्धि है, प्राप्ति हमारे लिए। अभी हम 1 मिनट के लिए, बाबा कैसे बैठे हैं देख रहे हैं आप सभी, आप सभी ऐसे बैठिए, आप कुछ करते हैं एक्सरसाइज सभी, बाबा बैठे हम भी बैठे ऐसे, बाबा कैसे बैठे हैं आप ऐसे बैठिए, बाबा की तरह बैठिए आप, अभी आ जाइए बाबा के आसन पर, ठीक है। और बाबा ऐसे बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप सामने की तरफ देखिए आप। मैं यहां पर एक शब्द लिखा हूं सेंटरिंग, इसका अर्थ है आप अपने जीवन में दिनचर्या में एक ऐसा स्थान फिक्स कर ले, जब भी आपके मन में ऐसे कोई बात हो, भारीपन हो, नेगेटिविटी हो, व्यस्त संकल्प चलता हो, आप उस स्थान पर आ जाओ। वो स्थान क्या हो सकता है, पांडव भवन मधुबन में बाबा का कमरा हो सकता है, बाबा का कुटिया, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, परमधाम, सूक्ष्म वतन, ये हो सकता है। या अगर आपको नदी की किनारा पसंद है या एकांत का स्थान पसंद है, जो भी, अभी आपको 1 मिनट के लिए, मैं इतने सारे स्थानों का नाम ले लिया, आप कोई भी एक स्थान पर पहुंच जाओ मन बुद्धि से 1 मिनट के लिए। उसमें चेक करना है कि जैसे मैं अपने मन बुद्धि को उस स्थान पर लेकर जा रही हूं, क्या मैं वहां पहुंच पा रही हूं या रास्ता भटक रही हूं। आपको 5 जगह जाने के लिए दिया जा रहा है, एक परमधाम या बाबा का कमरा, कुटिया, शांति स्तंभ या तो हिस्ट्री हॉल, 1 मिनट के लिए। जो गर्दन ऐसे कर रखे ना, तो सीधा करिए सभी, इस अभ्यास में सीधा करना बहुत जरूरी है। और आप स्वयं को सर्टिफिकेट दो कि 1 मिनट में जिस स्थान में पहुंचने के लिए कहा गया था मन बुद्धि के साथ, आप वहां पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। पहुंचने का अर्थ होता है बिल्कुल एक टिक, परमधाम माना परमधाम, बीच में ना सूक्ष्म वतन ना और कोई जगह। हमने सवाल किया था संगम युग की जो आसन है, जो स्थिति है, बाबा ने इस मुरली में कहा है नलेस फुल की स्टेज, चलते फिरते हम नलेस फुल स्टेज पर कितना है जब चेक करते हैं, तब हमारी जो संगम युग की आसन पर स्थित होने से जो राजयोगी की आसन कमल आसन पर आप निरंतर स्थित हो सकते हो। तो एक एक्सरसाइज करेंगे कि हम निरंतर संगम युग की जो स्टेज है, जो आसन है, उस पर स्थित है या नहीं है। बाबा इसी मुरली में कहा है जैसे सरस्वती को किसमें बिठाते हुए दिखाया गया है, हंस के ऊपर। तो संगम युग की जो स्टेज है नलेज फुल स्टेज, निरंतर होली हंस बनने की स्थिति, होली हंस। तो होली हंस की जो विशेषता है वो तीन बात में दिखाया जाता है, एक तो क्या राइट है, क्या रंग है, उसकी परख। ये बहुत जरूरी है, अभी अंतिम समय आ रहा है ना, आपके सामने अनेक दृश्य मिलेंगे, कई ऐसे आत्माएं दिखाई देंगे, आपको लगेगा जैसे मैंने पहले कहा बाबा, माया और बाबा में परख के लिए आपके सामने बहुत सारे दृश्य आएंगे। अगर अभी से राइट और रंग की परिचय न हो तो फंस जाएंगे, जब कई आत्माएं अभी भी फंस रहे हैं। हम इशारा किस तरफ कर रहे हैं आपको ध्यान में आ रहा होगा, बहुत सारी बातें बदल रही है, इसलिए अभी से होली हंस की आदत बनाओ। राजयोगी की दो आदत बताया जाता है, एक होली हंस सच्चा वैष्णव, होली हंस और सच्चा वैष्णव। उसको एक शब्द में कहा जाए सच्चा वैष्णव मतलब कोई भी अस्वच्छ अशुद्ध अपवित्र चीजों की तरफ अटेंशन ना हो, अनटचेबल मन बुद्धि से। और होली हंस में तीन बात, एक तो राइट और रंग, और दूसरा सदा शुद्ध संकल्प, और शुद्ध भोजन किसको देना है, बुद्धि को देना है। और आज इसी में ही कमी है हम सभी बच्चों की, कैसे कमी है, बुद्धि को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए राजयोगी जीवन में दो अभ्यास होना चाहिए। अगर ये नहीं है आप योगी बन नहीं सकते हो, फॉलोअर्स बन सकते हो, उपाय पर कर सकते हो, समाधान नहीं कर सकते हो। एक है, याद रखिए इस दो चीज को, मौन, एकांतवासी बनकर मौन को धारण जो करेगा, और दूसरा सोशल कन्वर्सेशन से इतना दूर रहेगा। सोशल कन्वर्सेशन मतलब आजकल मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। आज जो भी यहां पर बैठे हैं इस बात को नोट कर लीजिए, आज के बाद आपको क्या करना चाहिए अगर आप भविष्य में आने वाली माया की वार से बचना चाहते हो। जो करेगा सो पाएगा, क्या करना है, अगर कोई भी समाचार आपको मिलता है यज्ञ से संबंधित या ज्ञान को लेकर के, योग अभ्यास को लेकर के कोई भी समाचार आपको मिलता है, अगर वो समाचार मधुबन से नहीं और आपको आपकी निमित्त बहन नहीं सुनाया है, तब तक उस समाचार को सच समाचार नहीं मानना है। मैं जो बोल रहा हूं ये साधारण बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम खुद इस लॉकडाउन के दौरान कई आत्माओं को तकलीफ में होते हुए देखा है सिर्फ समाचार की वजह से। एक वर्ड लग गया है, व्हाट्सएप समाचार मिलते ही लाखों लोगों को फॉरवर्ड कर दे हम। जब तक आपको आपके निमित्त टीचर्स या मधुबन के पत्र पुष्प या मुरली के द्वारा वो समाचार नहीं मिला, तब तक आपका फर्ज है उस समाचार को किसी को फॉरवर्ड, इसमें होशियार बनने की जरूरत नहीं है। यह आपको नुकसान करेगा। होली हंस बनने के लिए इससे बढ़िया पुरुषार्थ कुछ नहीं हो सकता है। समाचार से बचो, जो जितना मौन रहेगा और सोशल कन्वर्सेशन अर्थात जो बात बाबा का नहीं है, जो बात ज्ञान से संबंधित नहीं है, उसको ना सुनना है ना सुनाना है। वो आपके हाथ में है, जो बनना है। बाबा कल की मुरली में कहा ना, चालाकी करते हैं बाबा के सामने, है ना। बाबा को बताते हैं कैसे, कल के मुरली को ले लो और लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या हमने किया उसे चेक कर लो। ये दो चीज होलियंस बनने की, बुद्धि को स्वच्छ बनाने की। इसमें बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं, बुद्ध बन जाओ समाचार को इकट्ठा करने की। हमारी मस्तिष्क को जो है ना, बाबा ने इसको बहुत सुंदर वर्तन बनाया है, अच्छी चीज रखने के लिए, गार्बेज रखने के लिए नहीं बनाया है। इधर उधर समाचार क्या डाल दो, बाबा से योग कब लगाओगे। तीसरा, स्वच्छता। तो आप सबके सामने जो डिब्बी दी गई है, आप अपने हाथ में रखिए उसको। अभी सभी उसको अपने हाथ में ऐसे रखिए, सभी आराम से रखो ताकि आपके हाथ धुके नहीं। 3 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे हम सभी अभी, और कोशिश करिए दाहिने हाथ में रखने के लिए, बाएं हाथ में नहीं, दाहिने हाथ में रखिए उसको। जैसे हाथ की हथेली है ना, हथेली पर रखिए बस उसको आराम से। आप चाहो तो यहां पर गोदी में रख सकते हैं, थोड़ी सी आप उसको देख सको ऐसे रखो उसको, ठीक है। खोलो मत उसको, खोलना नहीं है उसको, ऐसे डिब्बी को पकड़ के रखो ऐसे। और पकड़ते हुए आप सामने चित्र को देखिए स्क्रीन पर, कौन सा चित्र ये है स्क्रीन पर देखिए आप। एक योगी बैठा हुआ है और हंस का चित्र है। हंस क्या करती है, चुगती है पत्थर। और मोती की परख किसको है, हंस को है। और दूसरा क्या है हंस को परख, दूध और पानी की भी परख है। और दूध क्या है, पानी क्या है, कभी कभी बाबा मुरली में कहा है, इसी मुरली में बाबा ने कहा है। ये 25 से 94 की एक मुरली है, ये डेट की जो मुरली आपको दिखा रहा हूं इस मुरली में। तो बाबा ने इसमें कहा, कई बार बच्चे दूध को पानी बना देते हैं और पानी को, और पानी का अर्थ है बाबा उसमें कहा है, पानी का अर्थ है व्यर्थ और नेगेटिव, दूध का अर्थ है समर्थ और स्व चिंतन, परमात्मा चिंतन की बातें दूध और पानी में। और पत्थर और मोती का अंतर क्या है, पत्थर मतलब दुख दर्द किसी को देना, पीड़ा देना, ये पत्थर है। किसी को सुख देना, शांति देना, ये मोती है। तो आपके हाथ में एक डिब्बी है, हम प्रैक्टिस करेंगे किस ब्राह्मण जीवन में मैं होली हंस बना हूं या बनी हूं, कहां तक। और इसकी चेकिंग होगी, कोई भी परिस्थिति आने के बाद मेरी स्थिति क्या है, मैं परिस्थिति के दलदल में फंस जाती हूं या परिस्थिति से बाहर निकल करके मैं स्वस्थिति में स्थित हो जाती हूं। और परिस्थिति स्वस्थिति को करने के लिए आपके सम्मुख जो अभ्यास है, एक डिब्बी है, उस डिब्बी की पहले तो आप देखिए डिब्बी के आकार, आकार क्या है चेक करिए उसको, देखते जाइए उसको, जैसे हम बताते जा रहे हैं आप अभ्यास करिए उसको। खुद डिब्बी को देखते हुए संकल्प करिए, क्या क्या आपके मन में संकल्प आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको। एक तो उसकी कलर है, उसकी आकार, और क्या है उसकी वजन भी है वेट, और क्या है वो सख्त है या नरम है वो भी है। इसको गुण और धर्म कहते हैं, ये कठिन पदार्थ है। तो उस तरीके से स्वयं को देखो आप, ये शरीर एक डब्बा है, एक डिब्बी की तरह है। और इस शरीर रूपी डिब्बी में क्या है, आत्मा। डब्बा के साथ बाबा क्या कंट्रास्ट बताते हैं, मणि। ये शरीर डब्बा है, आत्मा क्या है, मणि है। और मणि को क कौन अलग अलग कलर में दिखाते हैं, लेकिन आदर्श मणि उससे कहते हैं जो सफेद हो और संपूर्ण गोल हो, एकदम सर्कल रूप में, उसको सबसे अच्छी मोती मानी जाती है, जिसको पर्ल कहते हैं। तो बाबा हम बच्चों की जो रूप कैसे कहा है, कैसे कहा है, सफेद और बिंदी है। बिंदी किससे कहते हैं, बिंदी के ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो है, बिंदी एक सर्कल है लेकिन बिल्कुल ऐसा बिंदी है डट लगा बिंदी लग जाए। तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे दो मिनट के लिए, इस डिब्बी को देखते हुए स्वयं को देखो, ये शरीर, दो मिनट का हम साइलेंस रहेंगे, उस दो मिनट में आप स्वयं को देखोगे, आत्मा शरीर रूपी डिब्बी में है और उसमें आत्मा मणि है, और मैं आत्मा मणि बन करके इस ब्राह्मण जीवन में दिन भर में कितनी मोती जुगती हूं और कितनी पत्थर जुगती हूं, स्वयं को चेक करना है इसमें दो मिनट में, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होकर के आप रखिए सभी प्रैक्टिस, तो आपको दिया गया जिनको मिला है आप करिए इसे प्रैक्टिस दो मिनट के लिए, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, इसको आप घर में कभी बैठ करके आधे आधे घंटे कर सकते हो। इस अभ्यास में क्या होगा, बाबा ने मुरली में कहा है, जब ये अभ्यास बार बार करोगे तो आपकी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति बढ़ेगी इस प्रैक्टिस से। और चेक करें ये जो आपने प्रैक्टिस किया उसमें आप स्वयं के बारे में क्या देखा, और ये खास करके ये अभ्यास आप कब कर सकते हैं, जब भी आप रास्ते में चल रहे हैं आपकी दृष्टि इधर उधर जा रही है, तो आप चेक करो आप क्या देख रहे हो, होली हंस की स्थिति बनती है दृष्टि से। अगर आप बाहर दुनिया की बातों को देख रहे हो तो आपकी अटेंशन जो है एकाग्रचित न होने के बजाय या एकाग्रचित नहीं होगा तो बुद्धि फटकेगी, और जब योग में बैठेंगे जो दृश्य चलते चलते आप देखते हैं योग में वो सारे दृश्य याद आएंगे। इसलिए बैठते हुए चलते हुए उठते बैठते बाबा कहते हैं कि होली हंस समझ के चलो, और जब होली हंस की स्मृति में आप आएंगे तो ऑटोमेटिक बुद्धि को वो थॉट मिलेगी आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अभी हम एक अभ्यास करेंगे आत्मस्वरूप की अभ्यास, स्वयं को देखने की अभ्यास। जो आत्मस्वरूप की बात करते हैं हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा मन बुद्धि संस्कार युक्त हैं, लेकिन इसमें और दो चीज जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, लाइट और। आप में से कौन है जब भी संकल्प आत्मस्वरूप में बैठते हैं या संकल्प करते हैं सबसे पहले संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा एक लाइट हूं माइट हूं, आज के बाद आप आड़ करके देखना, जैसे आप संकल्प करो कि मैं आत्मा एक आत्मा हूं, तुरंत एक संकल्प जोड़ो कि मैं आत्मा एक लाइट हूं एक माइट हूं, उसके बाद का संकल्प जो सत्य स्वरूप की बात करते हैं आत्मा का, ये पांच संकल्प के बिना आप सत्य स्वरूप पर टिक नहीं सकते हो। मैं आत्मा एक लाइट हूं एक माइट हूं, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इंद्रियां हैं आत्मा की, लेकिन आत्मा की जो स्वरूप है वो है लाइट और माइट। तो इसकी अभ्यास करने के लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है मुरली में, क्या एग्जाम्पल दिया है, अंत समय में आत्माएं सरसों के माफिक कैसे होंगे, पिस जाएंगे, अर्थात एकदम जैसे कितना लॉट में विनाश होगा, आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगे जैसे, तो सरसों का मतलब एक साथ सभी जैसे शरीर से निकल के परमधाम की ओर यात्रा करेंगे। तो मेरे को एक उदाहरण आया कि सरसों मिसल वही नहीं पिसेंगे जो पहले से बीज रूप में स्थित होंगे, बाबा ने उदाहरण दे दिया, हमको पिसना नहीं है, बाबा ने एक मुरली में कहा है जो मेरे सच्चे बच्चे हैं विनाश काल में विनाश को प्राप्त नहीं करेंगे। और सच्चे बच्चे कौन है? बाबा कहते हैं जो बार बार फुल स्टॉप को धारण करते हैं और समझते हैं कि मैं आत्मा बिंदी हूं। ये अभ्यास, इस अभ्यास के लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को देखो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, उस बिंदी में 84 जन्मों की कहानी नूंधी हुई है और एक एक सेकेंड में आप जो कर रहे हो आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है। जब ये स्मृति है तो आप कभी भी आपकी अटेंशन नेगेटिव व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगा। और इस पूरे ब्राह्मण जीवन में दो चीज की खेल है, स्मृति और विस्मृति की खेल है। जब आपको आत्मिक स्मृति है तो आपकी बुद्धि स्थिर है, व्यर्थ से मुक्त है। जो देह स्मृति है तो व्यर्थ और नेगेटिव साथ में है। तो हम एक अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास में ये चित्र को आराम से देख लीजिए, आगे एक चित्र दिखेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब आत्मिक दर्शन करेंगे आप, ये पांच चीज को आप देखेंगे, स्वयं की लाइट को और माइट को और मन बुद्धि संस्कार को देखेंगे। तो आप सबको पता है कि ये पांच चीजें एक जगह पर काम करता है। परमधाम में आत्मा की कौन सी स्थिति काम करती है? परमधाम में माइट, और सतयुग में संस्कार। सतयुग में संस्कार, ऐसा नहीं कि लाइट माइट नहीं होता है, सब कुछ है लेकिन संस्कार मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में। अभी यहां हम जो संस्कार डाल रहे हैं वो सतयुग में प्रैक्टिकल हम करेंगे। अभी दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं तो दैवी संस्कार के अनुकूल सतयुग में हम देवता बनेंगे। और द्वापर कलयुग में जो भक्ति मार्ग पूज्य स्वरूप में सबसे ज्यादा कौन सा शक्ति काम करती है? हमारी मन। मन का जो कार्य है भावना, मन में क्या है? भावना है। भावना का फल मिलता है द्वापर युग कलयुग में। और संगम युग पर बुद्धि की काम है, राजयोग मतलब बुद्धि योग है। और लास्ट में आत्मा लाइट स्वरूप को धारण करती है, डबल लाइट फरिश्ता बनती है। ये पांच जो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म स्वरूप हैं, ये अलग अलग समय पर कार्य करती हैं। योग के दौरान आप जिसको ज्यादा धारण करते हैं और उस समय उसकी स्मृति जागृत होती है आपकी। इसलिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनते हैं, हम स्वयं को देखेंगे हम। तो उदाहरण यहां पर सरसों का दिया गया है, एक छोटा सा सरसों की बीज है, आप उसको मिट्टी में रखो तो एक पेड़ बन जाता है। उसमें कितने सरसों बन जाते हैं इमेजिन करिए आप। वो सारे जो गुण उसके हैं एक छोटी सी बीज में भरी हुई है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे आत्मा के रूप में, हम आत्मा छोटी सी बिंदी 84 जन्म लेते हैं और कितने परिवार हमको मिलते हैं? 84 परिवार। और उसके हिसाब से कितने संबंध हमको मिलते हैं, कितने संपर्क मिलते हैं हमको। और इस सब को निकाल कर हम बीज रूप बनेंगे अभी। लेकिन अभी आप क्या अभ्यास करेंगे? मैं छोटी सी बिंदी आत्मा हूं और आपको जो सरसों दिया गया था ना, आप उसको अपने हथेली पर रखिए। आप ये प्रैक्टिस आप जब भी घर में बैठते हैं ना वो करना, आप देखिए कितनी जल्दी आपको एकाग्रता आ जाता है। सरसों जिसके पास है आप अपने हथेली पर रखिए और उसको देखिए और उसमें वही प्रैक्टिस करेंगे आप। ये सरसों की तरह मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूं और मेरी बिंदी स्वरूप की जो अभ्यास आप करेंगे इसमें मैं आपको थर्ड देता जाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे करना है। ठीक है, अभी आप अपने हथेली पर रखिए और उसको देखिए बिल्कुल एकाग्रचित होकर। उसमें तीन चीज दिखती है कि उसके कलर है, उसकी आकृति है, उसकी रूप, उसके अंदर की जो गुणवत्ता है। उसके क्या है? एक छोटी सी सरसों की बीज, उसके अंदर पूरा स्टोरी है। जब उसको मिट्टी में गाढ़ा दिया जाएगा तो उस वो फल, उसकी हाइट कितनी होगी पेड़ की, कितने फल निकलेंगे, वो सब उसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो मैं आत्मा अभी इस बीज रूप में हूं और मेरा रूप क्या है देखिए उसको। मेरा रूप जो है बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप, देखिए उसको। सरसों को देखते हुए भ्रुकुटी पर आ जाए बुद्धि रूपी नेत्र से, और देखे जैसे ये छोटी सी बीज सरसों की बीज है, वैसे मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी बीज रूप में हूं। मुझ आत्मा का जो रूप है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, सवेरे से लेकर रात्रि को सोने तक मैं जो भी कर्म कर रही हूं मन और बुद्धि के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए एक एक सेकंड मुझ आत्मा में रिकॉर्ड हो रही है, न सिर्फ इस जन्म की, जन्म जन्मांतर जो भी करके आई थी वो सब इसमें रिकॉर्ड है। और जैसे मैं आत्मा बिंदी की स्मृति में स्थित हो जाती हूं, ये सारे विस्तार सार रूप में आ जाता है। और जैसे मैं स्वयं को बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में देखती हूं, जन्म जन्मांतर की हुई कर्म और विकर्म वो परिवर्तित हो रही है। मैं आत्मा इस स्मृति से सत्य स्वरूप को धारण कर रही हूं। इस जीवन में सारे उलझन, सभी दुख और दर्द को समाप्त करने की एक ही संकल्प है, मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूं। मैं त्रिकालदर्शी बनकर के देख रही हूं कैसे मैं परमधाम से यात्रा शुरू की थी, आदिकाल में देव रूप में, मध्यकाल में पूज्य स्वरूप, और इस संगम युग पर ब्राह्मण स्वरूप में हूं। अब मुझे वापिस लाइट स्वरूप को धारण कर रिटर्न जर्नी करना है। मैं आत्मा बिंदु रूप हो, बीज रूप हो। मुझ आत्मा का रूप बिंदु रूप, मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप। मैं सतोगुणी हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने इस अभ्यास को 2009 की मुरली में कहा था कि बीच बीच में बच्चे फुल स्टॉप करो और इस संकल्प में स्थित हो जाओ, मैं अशरीरी बिंदु रूप आत्मा हूं। और आगे चलकर के अभ्यास बहुत 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 जरूरी है, बाबा ने तीन बार कहा था, समय निकाल के अभ्यास करके देखो। और एक अभ्यास अभी हम करेंगे, छोड़ो तो छूटो। दो भाई आ सकते हैं स्टेज के ऊपर, 2 मिनट की एक्सरसाइज है, दो आ जाए, और 2 बहनें इस तरफ जो आना चाहते हैं, सबके सामने एक सुंदर एक्सरसाइज इसी को लेकर एक्सरसाइज करेंगे। 2 बहनें आएंगे तो अच्छा होगा ताकि सभी देख सकेंगे। कोई आएंगे बहने? आप ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप आ जाइए, सामने आ जाइए, आप दोनों यहां पर दोनों सामने खड़े हो जाए। आ जाए बहन, आए कोई जो आना चाहते हैं, आपको सामने सबको देखने, ऐसे बराबर खड़े हो जाइए, बराबर, हाँ एक साथ बाजू बाजू में, हाँ ठीक है। तो वो एक दूसरे के हाथ पकड़िए आप, हाथ ऐसे पकड़ेंगे आप, दोनों की उंगलियां ऐसे ऐसे होगा जैसे, हाँ आप भी ऐसे इनकी तरह खड़े हो जाइए और एक दूसरे हाथ को एकदम जैसे कहते ना जोर से पकड़िए, जैसे हाँ नीचे रख के, हाँ जोर से पकड़िए आप, ठीक है। अभी सामने आपको देखना है, ये एक एक्सरसाइज है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब पकड़ के रखते हो, फिर कहते हो हम छूटते नहीं है। तो अगर आप देही अभिमानी में आत्मा देही हूं देह नहीं हूं इस स्मृति में स्थित हो जाएंगे तो सब कुछ ढीला हो जाता है। तो अभी आप पकड़ के रखिए, ऐसा पकड़े से दर्द हो हाथ को, एक दूसरे को पकड़ो जोर से, दुनिया दर्द देता है ना हमको, पकड़िए अभी ठीक है। और जैसे मैं कमेंट्री आपको जो कमेंट्री दूंगा आपको सुनना है, मेरे शब्दों पर अटेंशन देना है, उसके बाद हम आपको पूछेंगे क्या हुआ, दो मिनट से ठीक है। चलिए आंखें बंद करिए, अभी पकड़ मजबूत होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करिए। आप स्वयं को संकल्प दे, मैं देह नहीं हूं देही हूं। जैसे आप स्वयं को इस संकल्प में स्थित कर रहे हो, आपकी अटेंशन कहां जा रहे चेक करो। इस देह की कौन सी स्थान पर आपकी अटेंशन जा रही है? जो दोनों हाथों को मजबूती से पकड़े हो वहां पे, या भ्रुकुटी पर? अगर दोनों हाथों की तरफ है, अपनी अटेंशन को भ्रुकुटी पर ले आओ, संकल्प दो मैं देही हूं, मैं देही हूं, मैं देही हूं। जब मैं सुन रही हूं कि मैं देही हूं, कहां से सुन रही हूं? इन दोनों कानों से, अटेंशन भ्रुकुटी पर, स्वयं के स्वरूप पर अटेंशन दे, मैं देही हूं। देही अर्थात चमकता हुआ सितारा, अटेंशन बुद्धि की अटेंशन भ्रुकुटी पर, चमकता हुआ सितारा स्वरूप पर, मैं देही हूं। अटेंशन देना संकल्प की तरफ, मैं देही हूं, मैं देही हूं। अभी आप जो दो ग्रुप हैं, आपके हाथ की पकड़ ढीला हुआ है या अभी मजबूती से पकड़े हो आप? भाई लोग बताओ, ढीला हो गया ऑटोमेटिक? बहने ऑटोमेटिक ढीला हो गया ना ढीला? कितने समय में ढीला हो गया? ढाई मिनट में। अटेंशन कहां पर दिया तब ढीला हुआ? जब देह से आप हटा करके भ्रुकुटी पर दिया। चलिए आप बैठिए। तो बाबा बार बार कहते हैं अंतिम समय में साक्षात्कार मुहूर्त वही बनेंगे जो बार बार स्मृति में रहेंगे, मैं देह नहीं हूं क्या हूं, और ये देही स्मृति से ढीलापन आ जाएगा। अभी इशारा आएगा बच्चे अभी ऊपर चलो, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, कुछ तो बाजू में नहीं है, छोड़ के जा रहा हूं, ये लास्ट अभ्यास। अगर आपको नींद आती है योग में, हमेशा याद रखिए, लास्ट पॉइंट एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी यहां पर बैठे हैं आप अपने जीवन में एक आदर्श बना लीजिए। लाल लाइट जब जल रहा हो, योग चल रहा हो, उठना नहीं चाहिए। इस पर एक्सपेरिमेंट हमने किया है, दिखाने का समय नहीं है। जब आप लाल लाइट में योग कर रहे हो, योग चल रहा है, लाल लाइट में नहीं उठना है। अब उसमें मत पूछिए कि हम बैठे हैं उठना है, वो आपके हाथ में है, कह दिया गया आपको नहीं उठना है, क्योंकि नियम प्रमाण लाल लाइट चलाया जाता है, मन मुताबिक नहीं चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जब भी आपको नींद में योग में नींद आए, अगर संगठित रूप में आप बैठे हैं, तुरंत क्या करो, वहां से उठ जाओ। और क्या कर सकते हो, अगर आप अकेले में बैठे हो, संगठन में आने से पहले अगर आप अकेले में योग अभ्यास करते हैं तो ये तीन चित्र मैंने आपको दिखाया हूं जो कर सकते हैं। इसको बोलते रेस्ट्रिक्ट अवेयरनेस, मतलब अगर आप खड़े हैं, अगर आप बैठ के योग कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप खड़े हो जाओ, कोई एक ऐसे पोजिशन पर खड़े हो जाओ जैसे जैसे यहां पर दिखाया गया है, ये हो सकता है, या तो आप दोनों पैरों के पंजे पर खड़े हो जाओ एक मिनट के लिए, दोनों पैरों में खड़े होंगे ना, अगर अभी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, खड़े होते हैं और दोनों पैरों के पंजे पर ऐसे कोशिश करो एक मिनट के लिए खड़े होने के लिए, आप एक मिनट खड़े होंगे आपको 10 मिनट तक नींद नहीं आएगी। प्रैक्टिस करके देखना आप। और दूसरी बात, अगर नींद आती है, अगर आपको जिनको आदत है कि योग में नींद करने का, मतलब आंखें बंद हो जाती हैं, आज के बाद नहीं करना है कभी भी, योग में अगर आंख बंद करते हो प्राप्तियां रुक जाती हैं, आती तो है लेकिन रुक जाएगी आपकी। राजयोग अभ्यास की यही मूल मंत्र है। अगर आपको योग नहीं लगता है ना, बुद्धि इधर उधर भटक रहा है, पहले आंख खोलने की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद योग लग जाएगी आपकी। अगर कुछ नहीं होता है, क्या करना, जो एकांत में बैठते हो घर पे, एक दिया जलाओ और दिया की ज्योति को देखो आप, प्रैक्टिस करो आप। और कुंज दादी कहती है कि उस समय ऐसे बाबा क्या कराते थे, 21 बहनों के ग्रुप बनाते थे और सबके सम्मुख दिया रखते थे, आपको एकाग्र करना है, सिद्धि स्वरूप योग अभ्यास करना है, जिसकी दिया बुझ गई तो उसकी स्थिति क्या है। बाबा तो उस समय ऐसे करते थे कि अलमाइटी बाबा ऊपर से बताते थे कि किसकी बुद्धि भटकी, साक्षात्कार होता था। क्यों साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि इस बहन की बुद्धि भटक गई इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ। अगर आज कोई योग में नींद करते हैं, उनको थोड़ा सा पीछे से इशारा देते हैं, वो आग बबूला हो जाता है, होता है ना ऐसे। और उस समय तो लोगों को जगाया जाता था खास योग करने के लिए। अभी स्वयं को अर्जुन बनना है, समय बहुत कम है। अर्जुन बनने का मतलब होता है अलर्ट, एकाग्र और दोनों नेत्र खुली हुई हो। अगर आंखें बंद हो जाए तो लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे आप, ठीक है। अभी यह अटेंशन देना भट्टी के समय में। ओम शांति।